السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. رمضان المبارك کا مہینہ بخشش کا مہینہ، ایک ایسا مہینہ جس میں انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ انسان کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اب میں کیا کروں؟ کس طرح سے میرا رب مجھ پہ رحم کر دے؟ کیسے میرے گناہ دھل سکتے ہیں؟ کیسے میں سزاؤں سے بچ سکتا ہوں؟ تو امام ابن تیمیہ نے 10 طریقے بتائے ہیں کہ کس طرح انسان گناہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، یعنی سزا انسان کے اوپر سے ہٹ سکتی ہے. اب ہماری مرضی ہے ہم کون سا اس میں سے طریقہ چوز کرنا چاہیں گے اپنے لیے. پہلا طریقہ وہ کہتے ہیں کہ استغفار کرنا. استغفار کرنا یعنی بخشش طلب کرنا، لیکن یہ ساتھ ہی جڑا ہوا ہے توبہ کرنے کے، یعنی توبہ الگ ہے اور استغفار الگ ہے. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، توبہ تو نسوح کرو. تو پہلے تو بات یہ کہ توبہ ہے کیا چیز. تابہ یتوبو کا مطلب ہوتا ہے واپس آ جانا، پلٹ آنا، یعنی ایسے سمجھے کہ ایک مقام ہے، کسی کا کوئی مقام ہے جو پرماننٹ اس کا مقام ہے، اس سے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے، تبھی آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ واپس آ جاؤ. جیسے مثلاً ہے کہ کوئی یہاں پہ رہتا ہے، تو ہم اگر وہ کسی اور جگہ مثلا پاکستان چلا جاتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں آپ واپس آ جائیں، واپس اپنے پرمانینٹ ٹھکانے یا گھر کو کہا جاتا ہے، گھر واپس آ جاؤ. لیکن ہاں، جو کوئی پاکستان میں رہنے والا ہے اس کو اگر ہم بلائیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے واپس آ جاؤ، کیونکہ وہ یہاں نہیں رہتا. تو اس کا مطلب ہے کہ لوٹنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کا جو مقام تھا وہ کون سا مقام تھا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، اس کی فرما برداری کا، اس کے قرب کا، وہاں سے انسان ہٹ گیا ہے. اس وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے واپس آ جاؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ، دور چلے گئے ہو تم، پلٹ آؤ. یہ ہے توبہ کا معنی. اور انسان جب دور چلا جاتا ہے تو یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور چلا گیا، گناہوں میں پڑ گیا، اب اس کو بلایا جا رہا ہے. تو توبہ کیا ہے؟ ایکشن ہے. توبہ کیا ہے؟ ایسے جیسے سمجھ لیں یو ٹرن لینا ہے، کہ آپ راستہ بھول گئے، کہیں اور نکل گئے، تو آپ کو پتہ ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، وہ یو ٹرن توبہ ہے. اور استغفار کیا ہے؟ زبان سے کہنا کہ میں معافی مانگتا ہوں. اب یہ توبہ اور استغفار مل کے پھر بخشش بنتے ہیں. تو اب آپ کو کیا سمجھ آئی؟ توبہ ایکشن ہے اور استغفار زبان کا عمل ہے، زبان سے کہنا ہے. ٹھیک ہے. और कहा गया तौबतन नसूहा, नसूह किसको कहते हैं, नसहा से रफू करना होता है ना, कपड़े में कभी सुराख हो जाता है, कभी आपने देखा होगा वो रफू कर देते हैं उसको, तो बिल्कुल वो ऐसे हो जाता है कि जुड़ जाता है सारा, ऐसे लगता ही नहीं कि यहाँ पे कभी कोई सुराख था। अल्लाह अकबर, तो तौबा कैसी नसूह, इससे समझे कि वो तौबा के गुनाह से बाहर निकल आए और फिर ऐसे हो गए कि जैसे उस गुनाह से कोई ताल्लुक ही नहीं, जैसे किया ही नहीं, बिल्कुल उसको साफ कर दिया। ये है तौबतन नसूहा, यानी अब आपने पलटे भी तो ऐसा पलटे दूर दूर तक उससे कोई ताल्लुक नहीं, ना कभी उसके ऊपर फखर कर रहे हैं, ना कभी उसकी बातें याद कर रहे हैं, आए हम तो इतने ऐसे होते थे, बड़ा मजा आया करता था फलां गुनाह को करने में, उस वक्त तो हम ये करते थे, उसको मजे ले लेके बताना और उसके ऊपर बड़ा इंजॉय करना और बड़ा फखर करना, ये नहीं कि ऐसे कि बस आप उसमें इनसे निकल आए और आपने उसको वापस ऐसे जोड़ दिया, रफू कर दिया जैसे कपड़े को। तो क्या जरूरी है, तौबा भी जरूरी है और इस्तिग़फ़ार भी जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा गुनाह करता है फिर कहता है मेरे रब मुझसे गुनाह हो गया मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह ताला फरमाता है क्या मेरे बंदे को पता है कि उसका कोई रब है जो सजा भी दे सकता है और माफ भी कर सकता है, इसको पता है ये बात, तो मैंने इसको माफ कर दिया। अल्लाह हू अकबर। और याद रखें कि गुनाह करने में और गुनाह हो जाने में फर्क है, एक होता है ना गुनाह करना धड़ल्ले से कि तो क्या हो गया सभी लोग तो करते हैं और मैंने इतना सा कर लिया तो ऐसी क्या कयामत आ गई, और आजकल तो ये सभी बहुत आम है, अरे उसको कुछ ना समझना और इसकी परवाह ना करना कि अल्लाह ताला की नाफरमानी है, अंदर गिल्ट ना होना बल्कि धड़ल्ले से करना और किए चले जाना, उससे छोटा गुना भी बड़ा हो जाता है। और एक है गुना हो जाना, ये है करना, एक है गुना का हो जाना। हो जाता कैसे है, मसलन है कि आप किसी माहौल में थे, ऐसे माहौल में जहां पे हर तरफ इसी तरह की बातें हो रही थी, अब आप भी बातें करते करते आप भी फिसल गए और आप के मुंह से भी ऐसी बातें कुछ निकल गई जो नहीं होनी चाहिए थी, या ऐसी कोई कंपनी है जिनके साथ बैठते हैं तो वो इस तरह के ही फजूल काम कर रहे होते हैं, आप उनके साथ उसमें लग जाते हैं, या जज्बात में आके कुछ हो जाता है, मसलन गुस्सा बहुत था या गम बहुत था या डिप्रेशन छा गया था, कुछ ऐसा हुआ कि जज्बात से मखलूक उबो के कर बैठे, ऐसी सूरत हाल में जब गुनाह हो जाता है ना, किया नहीं जाता हो जाता है, तो जब हालात ठीक होंगे या आप उस मजलिस से निकल आएंगे या उस कंपनी से बाहर आ जाएंगे या आप उन जज्बात जो आपके ऊपर उस वक्त थे उस उन जज्बात का असर खत्म होगा, तब फौरन एहसास होगा हाय ये मैं क्या कर बैठी, हाय ला ये क्या हो गया, मुझे क्या जरूरत थी कि मैं ये करती, मैंने क्यों ऐसा किया, ये शर्मिंदगी जो है ना ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो इंसान से इस तरह होता है और ये कोई ऐसी बात नहीं कि अनोखी बात है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लू बनी आदम खताउन, सारे बनी आदम खताकार हैं, हर एक से गलती हो जाती है, हर एक का पैर फिसल सकता है, मगर बेहतरीन खताकार फरमाया वो है जो तौबा करता रहे हमेशा। और तौबा सिर्फ ये नहीं होती कि गुनाह हुआ ही है तो तौबा करनी है, खैर हमारे तो गुनाह होते हैं तो हमें तो करनी ही चाहिए, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी दिन में कई दफा तौबा इस्तगफार करते थे, नेक लोग अल्लाह ताला के वो तौबा इस्तगफार करते रहे हैं, तो वो तौबा किस पे करते, किसी से कोई नहीं भी गुनाह हो रहा होता तो थोड़ी भी तवज्जो अगर अल्लाह ताला की तरफ से हट के गैर अल्लाह की तरफ हो गई है तो इसके ऊपर भी वो पलट आते थे और तौबा करते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे। तो अब आपको समझ आया कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, इन तौबा करना और इस्तिग़फ़ार करना। याद रखें अगर इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीहां करता जा रहा है लेकिन वो गुनाह के अंदर ही रहता है, गुनाह से निकलता नहीं है, तो इसको कहा गया है ये तौबतुल कादिबीन है, झूठों की तौबा है। अगर कोई शर्मिंदगी नहीं, अगर कोई पलटने का इरादा ही नहीं तो किस बात पे हम इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं? फिर तस्बीह तो है लेकिन वो चीज़ नहीं है जिससे माफ़ी मिल जाए, जिससे बख्शिश हो जाए। लिहाजा ज़रूरी है कि पहले इंसान उस गुनाह को छोड़े कि ये गलत है, ये मेरे से गुनाह हो गया है, फिर उसके बाद इंसान जो है इस्तिग़फ़ार करता है। तौबा पलट आना है ना, मैंने आपको कहा यू टर्न लेना। और इसके लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, इंसान के अंदर पछतावा हो, इंसान उस गुनाह से बाहर निकले। फिर देखें, याद रखें सगीरा गुनाह तो ठीक है इंसान की नेकियां करने से भी माफ होते रहते हैं, हाँ, लेकिन जो कबीरा गुनाह है ना वो ऐसे ही माफ नहीं होते जब तक इंसान तौबा ना करे। तौबा करता है तो वो धुलते हैं, और तौबा के लिए मैंने आपको पहली शर्त क्या बताई, इंसान के अंदर निदामत हो। फिर वो निदामत होगी तो फिर वो उसमें से बाहर निकल आए, यानी अब ये अगर एहसास ही नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो ये क्या किस चीज़ के ऊपर इस्तग़फ़ार हो रही है? बाज़ लोग तो समझते ही नहीं कि उनसे कभी कोई गुनाह होता है, हम कौन सा ऐसा कुछ कर देते हैं, हमारे से कौन सा ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, ठीक ही तो हैं हम। तो लोग तो आजकल इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, फिर इसका मतलब है कि अगर आपको रिमोर्स ही नहीं है, अगर आपको शर्मिंदगी ही नहीं है, अगर आपको कोई पछतावा ही नहीं है, कोई निदामत ही नहीं है, तो फिर किस चीज़ की तौबा कर रहे हैं? तो ये निदामत का एहसास होना भी बड़ी नेमत है कि इंसान को ये एहसास हो जाए कि मैं गलत हूं और मेरे से गलतियां हुई हैं और मेरे से गुनाह होते हैं, और उसका सच्चे दिल से ये इरादा भी हो कि ये गलत है और मुझे इससे निकलना है। और वो उस वक्त कम से कम जिस वक्त वो तौबा कर रहा है वो उस वक्त निकले। आप कुछ लोग कहते हैं हमें तो फिर हो जाना है, तो फिर क्या फायदा तौबा करने का? नहीं, आज तो आप तौबा करें, जब होगा ये शैतान ज़हन में डालता है तुमसे हो तो जाना है। अब यहां तो एक ही दफा पक्की तौबा करना तो फिर ठीक है। बाज़ लोग कहते हैं हम हिजाब इसलिए नहीं लेते कि वो फिर अच्छी बात तो नहीं ना बाद में उतार देना, तो फिर हमें पता है कि किसी दिन तो हम उतार ही देंगे, लिहाजा हम लेते ही नहीं। देखिए कैसे शैतान इंसान को बहकाता है, क्या पता कि कल को मौत आ जाए, क्या पता जितनी दूर की हमने प्लानिंग की भी है उस वक्त तौबा करेंगे तभी, एक ही दफा करेंगे, फिर पक्का इरादा ही होगा तो करेंगे, अभी नहीं हमने, यानी अपना इरादा ही पक्का नहीं, अल्लाह की नाफरमानी पे जमे रहने का इरादा है, और इरादा यह है कि मैंने नाफरमानी ये छोड़नी नहीं है, फिर तौबा की क्या बात है, फिर तो कोई तौबा है ही नहीं, फिर इस्तिग़फ़ार की तस्बियां कुछ भी माने नहीं रखती। तो जरूरी है कि हमारे अंदर एहसास हो, शर्म हो, शर्म आए हमें कि हाय ये क्या हो गया, और इरादा भी है कि मैंने इसको छोड़ना है, बस मैंने छोड़ना है, और अल्लाह ताला तुम मेरी इसमें मदद करना, सिंसेरिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद इंसान फिर जुबान से इस्तिग़फ़ार करे, यानी आप शर्मिंदगी भी हो उससे बाहर भी निकले और ये इरादा भी हो कि मैंने नहीं कभी ये करना, और ज़ुबान से फिर इस्तग़फ़ार करे, तब ये तौबा नसूह बनती है, अल्लाह ताला फिर इसको कबूल कर लेता है। और हाँ, अगर यहाँ तक तो अल्लाह ताला के हकूक में है ना, कोई जो उसने हुक्म दिया है वो तोड़ दिया तो उसके ऊपर है, लेकिन अगर बंदों के हक में से कुछ हक मारा हुआ है तो फिर उनका भी नुकसान पूरा करना ज़रूरी है, या फिर उनसे माफ़ी मांग ले, वो माफ़ कर दें, तो फिर यहाँ तक फिर मामला खत्म हो सकता है। तो असलाफ में से किसी का कॉल आता है कि वो कहते थे कि सुबह को घर से जब निकलो तो अपनी दोनों जेबों में माफी लेके निकलो। एक वो माफी है कि कभी तुमसे कोई गलती हो जाए तो फौरन माफी मांग लो, दूसरी जेब में जो माफी है वो किस लिए है कि किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको फौरन माफ कर दो, ताकि शाम को जब तुम घर लौटो तो ना किसी का कोई हक तुम्हारे जिम्मे हो, ना तुम्हारा कोई हक किसी के जिम्मे हो, साफ सुथरे होके वापस आओ। सुभान अल्लाह, हम घर से निकलते हैं या हम लोगों से मामलात करते हैं, चले घर से नहीं भी निकलते होंगे वैसे मामलात जब करते हैं, तो वाकई ये बड़ी कारामत टिप है कि दोनों जेबों में माफी रखनी है, एक दूसरे को देने के लिए और एक खुद लेने के लिए। तो जब इंसान तौबा तो नसूहा कर लेता है तो फिर वो ऐसा हो जाता है गुनाह से पाक, अल्लाह ताला उसको ऐसा कर देता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। इतना बड़ा अमल है कि ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है, बल्कि सूरह फुरकान में तो ये भी आता है कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। इतनी बड़ी चीज है तौबा, यानी अल्लाह ताला को कितना भी दूर चला गया था, जब भी उसने वापसी का प्रोग्राम बना लिया, जब भी उसने इरादा कर लिया, जब भी वो पलट आया, तो अल्लाह ताला अपने दरवाजे उसके लिए बंद नहीं करेगा। मगर शर्त यह कि पलटे तो सही ना। अब हम चलते भी जाएं, पलटे भी नहीं ना, कभी यू टर्न लिया, गलत रास्ते पे चलते जाएं और ये सोचें कि बस माफी 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 माफी, तोबा 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 तोबा, ये कैसी तोबा है? हमने तोबा का मतलब समझा है? समझ भी आई है कि तोबा क्या चीज होती है? ये महीना वो है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो हलाक हो गया जो इस महीने में भी अपनी बख्शिश ना करवा सका। तो बख्शिश कैसे होगी जब इंसान इतनी पक्की सच्ची तौबा करेगा? हाँ, ये अलग बात है, आपने सच्ची तौबा की, वाकई ऑनेस्टली की, दिल से की थी, लेकिन फिर कभी ऐसा होगी, फिर से दोबारा गुनाह हो गया, वो ना हुआ तो दूसरा हो गया, दूसरा ना हुआ तीसरा हो गया, अब क्या करें? आए हमने तो तौबा की थी, अब क्या करें? नहीं तो फिर से तौबा कर लें, फिर हो जाए फिर से कर लें, लेकिन हर दफा सिंसेरिटी होनी चाहिए, हर दफा। ये किसी को आप इंसान के साथ थोड़ी मामला कर रहे हैं कि उसको क्या पता चलेगा, ऊपर ऊपर से मैं कहती रहूं और अंदर से मेरा कोई प्रोग्राम नहीं ठीक होने का। ये अपने आप को ठीक करना है, अभी नहीं करना तो कब करना है? अभी नहीं सोचना ये सब तो कब सोचेंगे? रमजान के महीने में भी हमें ख्याल ना आए कि मैं जो कर रही हूँ, ये जो गुनाह मेरे से हो रहे हैं, कहीं तो हमें कोई आइडिया होगा हम क्या क्या कर रहे हैं, ये मुझे गुनाह छोड़ने हैं, वो चाहे जुबान के गुनाह है, चाहे आंखों के गुनाह है, चाहे कानों के गुनाह है, चाहे और कोई कमाई करने के हैं, चाहे किसी किस्म के भी गुनाह, लोगों से मुतल्लिक हैं, अल्लाह ताला के हकूक में, इबादात से मुतल्लिक हैं, किसी से भी मुतल्लिक हैं, लेकिन मैंने अपने आप को फिक्स करना है। अगर ये फिक्र ही नहीं है और मैं समझती हूँ कि मैं ओके हूँ, आई एम गुड, आई एम फाइन, तो क्या फिक्स करेंगे? तो फिक्स तो टूटी हुई चीज को किया जाता है ना, फिक्स तो उसको किया जाता है कि जो जिसको ये अपने अंदर एहसास है। जिसको अपने अंदर ये एहसास हो कि मैं गलत हूं और मैंने अल्लाह ताला की जनाब में बहुत ज्यादा कमियां की हैं। और बहुत सारी मेरी जिंदगी नाफरमानी में गुजरी है और आज तक गुजर रही है, और मैं फिर तौबा करता हूं तो फिर मुझसे हो जाता है गुनाह। तब है जब अल्लाह ताला फरमाता है, कुल या इबादे अल्लदीना असरफू अला अन्फुसिहिम, कह दीजिए मेरे उन बंदों से जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया हुआ, ला तक़नातू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, इन्ना अल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह ताला सारी गुनाहों को माफ कर देता है, इन्नहू हुवल गफूर रहीम, वो तो है ही गफूर रहीम। पर तौबा से ही तवाब है, अल्लाह ताला का ये नाम भी आता है, वो तवाब और रहीम है, यहाँ पे गफूर रहीम है। देखिए जब अल्लाह ताला के दो नाम एक साथ आते हैं ना, तो दोनों नाम अपनी अपनी जगह भी माने रखते हैं, लेकिन जब वो कंबाइन आते हैं एक पेयर की सूरत में आते हैं, तो उनका एक तीसरा माना निकलता है, जैसे तवाब और रहीम, यहाँ पे गफूर रहीम। तवाब भी वो है जो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, गफूर वो है जो बहुत ज्यादा माफ करने वाला, दोनों के बाद रहीम आया। यानी जब हम किसी को माफ करते हैं ना, कहते अच्छा अच्छा और माफ कर दिया, लेकिन वो अब उसके साथ जो रवैया हमारा वैसा नहीं हो पाता जैसा पहले था, ऐसा ही है ना। इंसान ठीक है माफ कर भी दिया, रिलक्टेंटली माफ कर दिया, सही है कर दिया, वाकई माफ कर दिया, लेकिन पहले जैसे हो नहीं पाते। और कहाँ ये कि उसके साथ फिर कोई अच्छाई करना, भलाई करना। तो अल्लाह ताला तवाब और रहीम भी है, गफूर और रहीम भी है, माफ भी कर देता है, तौबा भी कबूल कर देता है। फिर उसके बाद ये नहीं कि अच्छा चलो कर दिए, अब जाओ मुझे ना शक्ल दिखाना कभी, नहीं, उसके बाद फिर रहम भी करता, यानी सिर्फ माफ करके फिर दूर नहीं कर देता, फिर अपनी रहमतें भी निछावर करता। ये सिर्फ वो रब ही कर सकता है, किसी इंसान का हौसला नहीं होता। तो अल्लाह ताला की जब हम बात करते हैं कि वो तौबा को कबूल करता है, वो माफ करता है, तो अब समझ आई किन शराइत के साथ ये बात है, या किस किस्म की तौबा होती है जो कबूल होती है, या किस किस्म की इस्तिग़फ़ार। अब मैं आपको कितने ही कलमे बता दूं, ये भी इस्तिग़फ़ार का, इससे भी तौबा कबूल होती है, इससे भी होती है, ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार है, इस्तिग़फ़ार के कलिमात का सरदार है, ये वाला कलमा है जो बहुत ज़्यादा भी इंसान ने गुनाह किया उसके ऊपर भी ये कलमा बोल देगा तो उसकी बख्शिश हो जाएगी, जितने भी बता दूं, लेकिन अगर मेरे दिल के अंदर ही ये चीज़ नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है, मैं रॉन्ग डूअर हूं, मुझसे गुनाह हुए हैं और हो रहे हैं, और मैं वापस भी सीरियसली आना चाहती हूं, तो फिर ये कलिमात, जब तक ये चीज अंदर एहसास नहीं होगा, ये कलिमात सिर्फ वर्ड्स हैं और कुछ नहीं है। इस चीज को समझें, जब हम ये अहादीस सुनते हैं, ये आयात पढ़ते हैं, हमें पता होता है कि अल्लाह ताला बड़ा ही बख्शने वाला है, मगर बख्शिश तो उसकी होना जो अपने आप को समझे कि मैं गुनाहगार हूं, समझता ही ना हो, वो फिर क्या बख्शिश के लिए आ रहा है, किस चीज की बख्शिश करवाना चाहता है। अगर समझता है कि हाँ मैंने से मैं गुनाह कर रहा हूं या मेरे से गुनाह हो रहे हैं, तो फिर तो उससे निकलने का इंसान को फिक्र होनी चाहिए ना, क्योंकि फिर उस अगर वो कह रहा है कि ये गलत है, तो गलत से तो निकलने की फिक्र होनी चाहिए ना, ना कि गलत में पड़े रहने का शौक है उसको। तो इसलिए तौबा अलग चीज है, इस्तिग़फ़ार अलग चीज है। तो इमाम इब्ने तैमिया जब ये बताते हैं कि कैसे इंसान सजा से निकल सकता है, सजाओं से कैसे हट सकती है, तो इस तरह से हट सकती है। फिर इसके बाद नंबर 3 क्या है, गुनाह के बाद नेकियां करना, इससे भी गुनाह की सजा दूर हो जाती है। इंसान नेकियां करे, जैसे सदका व खैरात करे, या इंसान एक नमाज के बाद दूसरी पढ़ता है, या एक रमज़ान के बाद दूसरा रमज़ान, या एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा, या एक जुमे के बाद दूसरा जुमा, ये इंसान के सगीरा गुनाहों को माफ़ करने का जरिया बन जाता है। या जैसे हम कहते हैं कियामुल लैल करें, तो इससे भी गुनाहों की बख्शिश होती है। फिर इसी तरह चौथी चीज़ कि जब दूसरे मुसलमान उसकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं, जैसे कि जनाजा है किसी का, उसकी नमाज पढ़ी जाती है, तो उसके अंदर जो दुआ है वो भी उसके लिए हम बख्शिश मांग रहे होते हैं जो फौत हुआ है, इससे भी उसकी सजा दूर हो जाती है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में 100 मुसलमानों का जिक्र है, दूसरी में 40 का जिक्र है। जो 40 पक्के तौहीद वाले होंगे, वो अगर किसी का जनाजा पढ़ते हैं, यानी उसके लिए दुआ कर रहे हैं जनाजे में, तो फिर अल्लाह ताला उसको बख्श देता है। इसी तरह पांचवीं चीज के जब इंसान फौत हो जाए, तो उसने जो सदका जारिया किया है, या उसके पीछे कोई लोग नेकी काम उसकी तरफ से कर रहे हैं, जैसे सदका कर रहे हैं, या उसकी तरफ से हज कर रहे हैं जब उसने नहीं किया था, या फिर उसके छूटे हुए रोजे रख रहे हैं, तो इससे भी उसके गुनाह की बख्शिश हो जाती है। इसी तरह कयामत के दिन अगर तक वहां तक कोई पहुंच गया और उसके ऊपर गुनाह हैं और उसकी बख्शिश दुनिया में नहीं हुई है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत से उसकी बख्शिश हो सकती है, वो सजा से बच सकता है। जैसे कि आपको मालूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि हर नबी को अल्लाह ताला ने एक दुआ दी कि ये दुआ आपकी लाजमी कबूल होगी, तो हर नबी ने अपनी दुआ ना दुनिया में ही कर ली, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस एक दुआ को आखिरत के लिए रख लिया कि मैं उस दिन अपनी उम्मत के लिए शिफात करूंगा। सुभान अल्लाह। तो उससे भी इंसान सजा से बच सकता है। फिर सातवीं चीज है मुसीबतें, गम, परेशानियां, मसले, जो प्रॉब्लम जिंदगी में आते हैं ना, जो गम आते हैं, वो भी इंसान के ऊपर से सजाओं को टालने का जरिया बन जाते हैं, क्योंकि उससे उसके गुनाह झड़ जाते हैं, और जब गुनाह झड़ेंगे तो जाहिर है फिर सजा तो नहीं मिलेगी उस गुनाह की, क्योंकि गुनाह ही खत्म हो गया। तो किसी का मैं कॉल पढ़ रही थी, उन्होंने इतनी प्यारी बात की कि अगर हमारे पास दुनिया में मुसीबतें ना आती तो हम तो कयामत के दिन कंगाल होते, क्योंकि फिर जाहिर है इतने गुनाह लेके वहां पहुंचेंगे, तो मुसीबतें हमें समझ लें क्लींजिंग प्रोसेस है ये, आपको छोटा सा भी मसला आता है वो आपको क्लींस कर रहा है गुनाह से। कोई आफत आती है, कोई परेशानी आ जाती है। फिर आठवीं चीज है अल्लाह ताला महफूज रखे इन चीजों से, अजाबे कब्र। जिसको कब्र में अजाब हो गया ना, फिर कयामत के दिन फिर उसको सजा नहीं मिलेगी, अगर उसका गुनाह उसके ऊपर ही धुल गया तो। तब कि अगर गुनाह इतना ही था तो कब्र में जब अजाब हुआ तो आखरत का अजाब फिर नहीं होगा, क्योंकि जाहिर आप गुनाह, ये अजाब किस लिए है, गुनाह साफ करने के लिए, गुनाहों को झाड़ने के लिए। अब दुनिया की मुसीबतों से भी नहीं झड़े, वो इतने गुनाह थे या इतने इंटेंस थे। अब अजाब कब्र है, उससे उसकी सफाई हो रही है। अच्छा, अब हो सकता है कि किसी के इतने अजाबे कब्र उसको या हो ही ना, तो फिर क्या है, कयामत के दिन की हौलनाकियां, उस दिन की सख्तियां, उस दिन की परेशानी, उस दिन की एंजाइटी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, तो उससे भी इंसान के गुनाह झड़ जाएंगे और वो सजा से बच जाएगा, यानी जहन्नुम की जो सजा है उससे बच जाएगा, या जो अजाब है वहाँ के दर्दनाक अजाब हैं उनसे बच सकता है। और आखिरी चीज जो मैं बहुत ज्यादा मांगती हूँ कि अल्लाह ताला उससे हमें पाक करना। जब भी मैं तौबा करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला माफ कर देना, अगर ये नहीं कि मुसीबतें भेज के, मुसीबतों से भी तो इंसान की माफी हो जाती, ये नहीं कि कोई आजमाइशों में डाल के, ये नहीं कि हो सकता है कब्र के हिसाब से माफी हो जाए, लेकिन जो दसवीं चीज है वो ये है कि अल्लाह ताला की रहमत, कि उसकी रहमत ऐसी हो कि इंसान को ऐसे ही वो माफ कर दे, कोई मसलों के बगैर, कोई परेशानियों के बगैर, ना दुनिया की ना आखरत की। और यही वो रातें हैं, ये अल्लाह ताला की रहमत बहुत ज्यादा है। तो इस पूरे महीने में ही बहुत है, इस वक्त जो अल्लाह ताला की रहमत को ना पा सका तो फिर और कौन सा वक्त होगा जिसमें वो पा सकेगा। इस वक्त जब उसकी रहमत जोश में है, इस वक्त भी अगर उसने माफी ना पाई, इस वक्त भी उसके गुनाह ना झड़े, इस वक्त भी उस के ऊपर से ये सजाएं टालने का अमल ना हुआ, तो फिर और कब होगा। जानते हैं उलमा कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी रमजान में भी बख्शिश नहीं होती, लैलतुल कद्र पे भी नहीं बख्शिश होती, वो चार गुनाह करने वालों के बारे में कहते हैं। एक वो है जो शराब का आदी हो, नशा करने वाला शख्स, चले इस कैटेगरी से तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बचे हुए हैं। दूसरा है वालदैन का नाफरमान, तो ये देखना चाहिए वालदैन को नाराज तो नहीं किया हुआ, वालदैन नाखुश तो नहीं है। जैसे लोग हज उमरे पे जाने से पहले लोगों से माफिया मांगते हैं, वो बेहतर तो ये है, हज उमरे को तो एक रिचुअल बनाया हुआ है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि दीन में कहा गया कि आप हज उमरे पे जाने से पहले माफिया मांग के जाओ। मैं तो कहती हूँ ये महीना शुरू होने से पहले, रमजान का उस वक्त नहीं किया तो इन रातों के शुरू होने से पहले वालदेन से कम से कम जरूर माफी मांगी जाए, या उनका दिल खुश किया जाए, या उनको अगर नाराज किया हुआ है तो उनको मना लिया जाए। वालदेन को दुख देने वाला जो उनका नाफरमान है, मतलब ये कि उनको दुखी किया हुआ उसने। फिर तीसरा कताए रहमी करने वाला, जिसने टाइज ऑफ किनशिप तोड़े हुए हैं, रिश्तेदारियों को तोड़ा हुआ है। हमें तो अपने दोस्त बहुत पसंद हैं लेकिन रिश्तेदार जहर लगते, ये रिश्तेदार हैं हमारे, इनके ऐसे ऐसे पता नहीं कितने गिले शिकवे दिल में पाले होते हैं। और चौथा जो दिल में कीना भरे हुए हो, आपको पता है ना मंडे थर्सडे को तो वैसे भी हर एक की अल्लाह ताला बख्शिश कर देता है, मगर जिसके दिल में कीना होता है ना उसकी नहीं बख्शिश होती, जो शिर्क करता है उसकी भी नहीं होती, शिर्क करने वाले की तो वैसे ही नहीं है ना। अब पता है अल्लाह ताला को अपने बंदे कितने प्यारे हैं। ये जो आप सारी बातें सुनते हैं, जकात देना, फितराना देना, रोजा खुलवाना, यतीम के सर पे हाथ फेरना, बेवा मिस्कीन के काम आना, किसी के रास्ते से तकलीफ दे चीज उठा देना, रिश्तेदारों के साथ भला सलूक करना, उनके साथ जोड़ के रखना, वालदैन की खिदमत करना, इनके ऊपर कितने बड़े बड़े अजर हैं। तो आप ये बताएं मुझे कि ये जो सारे काम मैंने आपको गिनवाए हैं, या इसी तरह जनाजा पढ़ना, किसी को दफनाने के लिए साथ चले जाना उसको कब्र तक, किसी का कर्ज अदा करा देना, किसी के काम आ जाना, ये तो बंदों से मुतालिक है। और सोचे कि इनके ऊपर रिवॉर्ड्स कितने बड़े बड़े हैं, यानी एक जगह पे तो आता है अल्लाह ताला को वो शख्स इतना महबूब है, कौन जो किसी मुसलमान का दिल खुश कर दे। आपने किसी का दिल खुश कर दिया है ना, ये लतीफे आप सुना रहे हैं, मतलब ना उसकी कोई मुश्किल है, उस बेचारा की परेशानी के अंदर है, आपने उसकी परेशानी दूर कर दी, उसका दिल खुश हो जाएगा ना, आपने उसको कोई तसल्ली दे दी, आपने उसका कोई कोई अच्छा मशवरा दे दिया, आप उसके कोई काम आ गए तो अब उससे उसका दिल खुश हो गया। या आप कोई ऐसे गम के अंदर था, आप उस वक्त उसको ढारस बंधा रहे हैं, उसको हौसला दे रहे हैं, उससे ऐसी बातें कर रहे हैं, उसको बड़ी तसल्ली हो गई आपकी बातों से। दूसरा, जो किसी की तकलीफ दूर कर दे। तीसरा, किसी का कर्ज अदा कर दे। चौथा, किसी की भूख मिटा दे। अब देखने को ये सारे काम इंसानों के साथ है, अल्लाह ताला को थोड़ी कोई फर्क पड़ता है इससे। अजर सवाब के मुंह खोल दिए गए इनके ऊपर, अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे को अपना महबूब बना दिया, उसको अल्लाह ताला उससे बड़ी मोहब्बत करता है जो ऐसे करता है, ये सारे काम करता है। हालांकि सोचे ना आप जरा कि अल्लाह ताला को क्या हासिल हुआ इससे। ये आप किसी के काम आ रहे हैं, किसी की भूख मिटा रहे हैं, किसी को जकात दे रहे हैं, सदका दे रहे हैं, रोजा इफ्तार करा रहे हैं, रिश्तेदारों से अच्छा करें, वालदेन से चले, तो अल्लाह ताला को कि बादशाहत में कोई इजाफा नहीं हुआ इससे, कोई उसको फर्क नहीं पड़ा, उसके खजाने को ज्यादा नहीं भर गए आपके ये करने से। फिर वो क्यों इस पे अजर देता है, कभी सोचा आपने? इतने बड़े अजर एक ही रात के बराबर, जो ओहद पहाड़ के बराबर है, और फिर अब सबसे ज्यादा वजनी अमल होगा ये, उसने अखलाक जो है अच्छा अखलाक लोगों के साथ, और फिर कहीं कोई फरिश्ता मुकर्रर हो जाएगा, आप गायबाना किसी अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करें, उसको नहीं पता कि आप उसके लिए दुआ करें, आप बैठ के दुआ करें, ये कोई इतनी ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के लिए दुआ करें तो उसको जा जा कर बताएं, आपको बताएं मैंने आपके लिए दुआ की, मैंने आपके लिए, तो उसके ऊपर एहसान ना झाड़े, आप उसके लिए गायबाना दुआ करते, अल्लाह ताला ने उसकी भी एक इंसेंटिव दे दिया, तुम गायबाना दुआ करोगे अल्लाह ताला फरिश्ता मुकरर कर देगा जो तुम्हारे लिए दुआ करेगा। आप इतने सारे लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, जब तो उन सब के बदले में आपने मसलन अब हरम में आपने कहा या अल्लाह ये जितने लोग आए हैं, या आप मस्जिद में या अल्लाह जितने लोग आए हैं ना सारों को बख्श दे, या फिर आप कहते हैं या अल्लाह तमाम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की बख्शिश कर दें, हर मोमिन मर्द और औरत के बदले में आपको एक नेकी मिल गई। कौन दे रहा है? अल्लाह ताला दे रहा है, लेकिन उसको क्या फर्क पड़ता है? क्यों? इसलिए कि उसको बहुत मोहब्बत है अपनी मखलूक से। आपको क्या देता है वो? तुम किसी को कुछ सिखा दो, तुम्हारे लिए सदका जारिया हो जाएगा, मैं नेकियां देता रहूंगा, तुम किसी का कर्ज माफ कर दो, इस पर तुम्हें इतना अजर मिलेगा कि जब तक वो तुम्हें कर्ज लौटाता नहीं है, किसी को कर्ज दिया मुसीबत में दे दिया, जब तक लौटाता नहीं आपको अजर मिलता रहता है सदका करने का। तो ये सारे तो इंसानों के साथ भलाई के काम है, अल्लाह ताला को अपने बंदे इतने महबूब हैं, अपनी मखलूक से इतनी मोहब्बत है कि वो दूसरों को ये इंसेंटिव्स देके, ये रिवॉर्ड के वादे देके उनसे किसी और के काम करा रहा होता है। आप सोचते नहीं, हम खड़े में हर नमाज में हर रकत में हम कह रहे हैं इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, हमें दे, नहीं तो मुझे तो कहना चाहिए मुझे दिखा दे सीधे सीधा रास्ता, मुझे हिदायत दे दे सीधे रास्ते की, मुझे तो अपनी मांगनी चाहिए ना, मैं क्यों कह रही हूँ ए दी ना, हमें यही सिखाया गया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि आप सेल्फिश ना हो, सिर्फ अपने लिए ना मांगे, सारों के लिए मांगो, सबके लिए मांगो कि अल्लाह सबको सिराते मुस्तकीम दे दे। ये तो हमें समझ नहीं आती ना, तो इसलिए हम मांग लेते, वरना तो शायद हम कहेंगे अल्लाह ताला किसी को भी ना देना, हमें ही सिर्फ दे, किसी को कोई खैर ना पहुंचे, मुझे ही सिर्फ मिले। इंसान तो इतना थुड़दिला बखील है, अल्लाह ताला ऐसे वादे दे दे के ना कि तुम ये करोगे तो तुम्हें मैं दूंगा, तुम मेरी मखलूक के साथ ऐसे करोगे उसके दर्द को कम करोगे, उसकी तकलीफ में उसके काम आओगे, उसके साथ खड़े हो जाओगे, उसको तसल्ली दोगे, उसकी भूख मिटा दोगे, मैं तुम्हें अजर दूंगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके बंदों के साथ अच्छा करें। आपने देखा है वालदेन की सबसे ज्यादा ख्वाहिश क्या होती है अपने बच्चों के बारे में? कि ये मिलके रहें, मिलके रहें ना, आपस में लड़ते हैं तो किसको तकलीफ होती? सबसे ज्यादा वालदेन को तकलीफ होती है। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि उसके बंदे आपस के अंदर खिंचाव, आपस के अंदर लड़ाइयां, फसाद, झगड़े, ये नहीं चाहता। इसीलिए कीना रखना दिल के अंदर कितनी बुरी चीज़ है, वो तो चाहता है कि आप सारों के काम आ रहे हैं, आप सारों के खैर ख्वाह हो, आप सारों के लिए भाग भाग के कुछ करने वाले हो, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आने वाले। वो कहता है तुम अच्छे अखलाक से पेश आओ, मैं तुम्हारा ये अमल सबसे वजनी तोलूंगा, इवन नमाज रोजे से भी ज्यादा वजनी। ये उसने अखलाक तोल रहा होगा उस दिन, उसने अखलाक किसके साथ करना है? अच्छा अखलाक किसके साथ है? बंदों के साथ है ना। वो चाहता है आप उसके बंदों के साथ अच्छे रहें। और कहां किसी ने अपने दिल में पाले में कीने, गंद भरा हुआ दिलों के अंदर, और जाके अल्लाह ताला से इस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कर रहा है। पहले दिल को तो साफ कर लो, उसको अच्छा नहीं लगता, सारे ही उसके बंदे हैं, साफ कर लो। पता नहीं कौन उसको कितना प्यारा हो, निकाल दो तो दिल से ये गंद, निकालो आज इस गार्बेज को, साफ करो आज। घरों को तो साफ करते हो ना कि फरिश्तों ने आना है, लैलतुल कदर की तैयारी करनी है मुझे, मेरे घर फरिश्ते विजिट करेंगे। गंदगी की जगहों पे नहीं जाते, जहां पे कूड़ा डाला जाता है वहां नहीं जाते, गार्बेज की जगह पे नहीं जाते, और जिनके दिल ही गार्बेज हो वो ऐसे दिल अल्लाह ताला को पसंद आ जाएंगे? तो बख्शिश नहीं करता फिर कीना रखने वाले की। अब आप बता दें कि आपने कीना रखना है और फिर बख्शिश मांगते रहे, तो या फिर आपने कीना निकालना, आपने अल्लाह ताला की रहमत पाके और अपने आपको सजा से बचाना है, या मुसीबतों से, अजाबों से और कयामत के दिन की हौलनाकियों से, या कब्र के अजाब से अपने ऊपर से ये सजा को टालना, किससे करना? हम अल्लाह ताला से यही मांगेंगे, अल्लाह तू अपनी रहमत से हमें बख्श देना, हमें हमारे पर कोई भी मुसीबत ना डालना, ना दुनिया में ना आखरत में। तो इसके लिए जहां पे हम आजकल अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन तुहिब्बुल अफ्व फ़ाफ़ु अन्ना ये मांग रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई है, तो इसमें भी बख्शीश ही तो है। अल्लाह ताला मिटा दे मेरे गुनाहों को, ऐसे मिटा दे। देखें एक है इस्तिग़फ़ार, गफ़ारा कहते हैं कि किसी चीज़ को ढांप देना, गंदगी है ना तो आप उसको ढांप देते हैं, और एक है मिटा देना। अब ढांप देने का मतलब क्या है कि कवर तो हो गई है वो, लेकिन आमालनामे में है, फरिश्तों को भी पता है, जमीन को भी पता है जहां पे वो गुनाह किया है, और जो भी और गवाह हैं उनको भी पता है। लेकिन दूसरा है अल्लाहुम्मा इन्नका आफुवुन, अल्लाह ताला का नाम गफूर भी है और आफूव भी है, अल्लाह ताला तू आफूव है यानी मिटा देने वाला। तो वो कैसे है कि जैसे आप बोर्ड पे कुछ लिखते हैं और उसके बाद डस्टर से उसको मिटा देते हैं, कुछ ट्रेस रहता है वहां पे? कुछ भी नहीं, ऐसे हो जाता है जैसे कुछ लिखा ही नहीं। तो इस तरह से अल्लाह ताला मिटा देता है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन, अल्लाह ताला ऐसे मिटा देने वाला है कि ना फरिश्तों को याद रहेगा कि इस बंदे ने ये गुनाह किया, ना ही जमीन को याद रहेगा कि इस बंदे ने ये गुनाह किया, बल्कि अल्लाह ताला सबको ही भुला देगा। तो अल्लाह तू माफ करने वाला है बल्कि मिटा देने वाला है, तो है बुलाफवा, तू पसंद करता है, तुझे बड़ा अच्छा लगता है माफ करना। तो वो अपने लिए सिर्फ पसंद करता है या अपने बंदों के लिए भी? हमारे लिए भी वो पसंद करता है कि हम भी इसी तरह माफ कर दिया करें, हम भी लोगों को माफ करते हैं, क्योंकि इस चीज से अल्लाह ताला को बड़ी मोहब्बत है, तो वो चीज अल्लाह ताला को करके दिखाएं जिससे उसको बड़ी मोहब्बत है, जो उसको पसंद है। हमने तो पकड़ी हुई है चीजें ना, जो छोड़नी ही नहीं कभी, मैं तो भुला ही नहीं सकती। भूलेंगे कैसे, जब इतनी दफा रिपीट करेंगे तो कैसे भुलाया जाएगा, और बार बार दावे भी करते मैं नहीं कभी भुला सकती, नहीं भूल जाए, कम से कम आज ये तय कर लें कि मैंने भूल जाना, मैंने निकाल दिया ग्रज, फाफ आनी, बस मुझे माफ कर दे। और अगर हम खुद ही किसी को कभी माफ नहीं करते, तो हम किस मुंह से अल्लाह ताला के सामने जाते हैं कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, जबकि मैंने किसी को माफ नहीं करना,
जबकि किसी ने मेरे साथ कितना बड़ा कसूर कर लिया होगा, इतना तो नहीं किया होगा जितना कि हम अल्लाह ताला की जनाब में कर लेते, जबकि उसका हक हमारे पर बहुत बड़ा है। हमें तो एक पल भी उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए थी, और हम क्या क्या कर बैठते, दिन में कितने गुनाह हो जाते हैं। फिर एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, कब से कितनी दफा कर देते हैं, लेकिन वो हर दफा फौरन पकड़ता नहीं है, बल्कि माफ करके जब इंसान माफी मांगता है तो उसके ऊपर रहम भी करता है। चलो हमारे अंदर इतना वो हौसला है नहीं, छोटे छोटे हमारे दिल हैं, तो लेकिन कम से कम माफी कर दे। तो इस वक्त आपको मैं 1 मिनट देती हूँ, जितनी देर में हम दुआ सुनेंगे और अगले सेगमेंट तक जाएंगे, आप सोचें किस किस के लिए मेरे दिल के अंदर कीना है, किस किस के लिए मेरे दिल के अंदर बुराई है, बोगज है, गुस्सा है। मैंने नहीं कभी इससे बात करनी, मैंने नहीं कभी इससे इसका इसकी शक्ल देखनी। बस आज रात इसलिए माफ कर देना कि अल्लाह ताला तू मुझे माफ कर दे, और अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि मेरे दिल को बिल्कुल साफ कर दे, मेरे दिल के अंदर अपने बंदों के लिए खैर ख्वाही डाल दे, उनके लिए अच्छे जज्बात डाल दे, सब इंसानियत के लिए, तमाम इंसानियत के लिए, क्योंकि सब तेरे बंदे हैं अल्लाह। तो ये दुआ कीजिए और अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे। वो आती है ना मोमिन आदम की स्टोरी, कि जिसके अंदर हमने बचपन में पढ़ी थी, जिसमें वो रात को उठते हैं तो देखते हैं कोई लिख रहा है, अल्लाह हू अकबर, क्या लिख रहा है कि वो जो बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो पूछते हैं कि इसके अंदर मेरा नाम है, तो कहा जाता है नहीं आपका तो नाम नहीं है, कहते हैं उसमें लिख लो जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है। अगले दिन फिर आंख खुलती है, देखते हैं कोई लिख रहा है, कहते हैं क्या लिख रहे हो, जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, पूछते हैं इसमें मेरा नाम है, हाँ इसमें आपका नाम सबसे टॉप पे है, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो उससे मखलूक से मोहब्बत करते हैं, उसके मखलूक के साथ अच्छे हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे, हमें बड़े दिल दे कि जिन दिलों के अंदर इतने हौसले हों कि हम लोगों से दरगुजर कर सकें, गुस्से को पी जाएं। अल्लाह ताला हम सबको माफ करे। ठीक है, इंशाल्लाह वो ताला चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। इतनी देर आप इंशाल्लाह सोचें, और इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में आएंगे तो साफ दिलों के साथ आना है। अस्सलाम।